अमन ने तारा परी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया क्योंकि शहर में 3 दिनों के लिए रिक्शा ऑटो की हड़ताल थी। तारा परी पहले तो मना कर दिया अमन की गाड़ी में बैठने से, पर अमन ने जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में तारा परी अमन को उकसाने के लिए काफी उल्टा सीधा बोलती रही, लेकिन अमन खामोश रहा और उसे भी चुप रहने को कहा। एक खामोशी के साथ अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वीरान सड़कों पर गाड़ी दौड़ने लगी। तारा परी गाड़ी की सीट से टेक लगाए आंखें बंद करके बैठ गई और उसके दिमाग में अमन सिंह राठौड़ का अतीत घूमने लगा जो तारा परी अमित के जरिए जान पाई थी। लेकिन तारा परी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो केवल आधा अधूरा अतीत ही जान पाई थी। अमित को जितना पता था उतना ही तारा परी जान पाई थी। अचानक तारा परी एकदम खामोश हो गई। अमन बार बार आंखें बंद करके बैठी तारा परी को देख रहा था। उसने ही उसे चुप करके बैठने को कहा था, जो अब वो चुप करके बैठ गई थी। अमन उसकी कचर कचर मिस करने लगा और उसे चोर नज़रों से देख रहा था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाया। जब तारा परी काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली, तब अमन ने उसे बुलाने के लिए बात करना शुरू की और बोला, हेलो मिस, आपके घर का रास्ता किस ओर है? आप एक बार जाकर बताएंगी मुझे या नहीं? तारा परी ने अमन की बात सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो इस वक्त अमन सिंह राठौड़ के अतीत में खोई हुई थी। जब से उसने अमन का अतीत देखा था, तब से उसे अमन पर दया और गुस्सा दोनों आ रहे थे। अमन तारा परी के जवाब के इंतजार में था। जब काफी देर तक तारा परी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो इस बार अमन थोड़ी और तेज आवाज में बोला, हेलो मिस, क्या आप बताएंगी कहाँ है आपका घर? जैसे ही अमन तारा से एड्रेस पूछ रहा था, तभी अमन की गाड़ी में एक ब्लास्ट सा हुआ। तारा परी घबरा कर अपनी आंखें खोल ली और अमन से बोली, कैसी आवाज थी, क्या हुआ है? क्या हुआ है ये तो गाड़ी में से उतरने पर ही पता चलेगा। अमन और तारा परी दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि अमन की गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर पंचर हो गए थे। अमन ने ध्यान से देखा तो पाया 2 बड़ी-बड़ी कीलें उन टायरों में घुसी हुई थीं। अमन को ये देखकर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान इलाका था और आए दिन इस इलाके से चोरी चकारी की खबरें आती रहती थीं। वो दोनों इसी जगह फंसे थे जहां से उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी। तारा परी चाहती तो अपनी शक्तियों का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में टायर ठीक कर सकती थी, लेकिन उसके देवता ने उसे इंसानी मुश्किलों में अपनी ताकत उपयोग करने से मना किया था, सो वो चाहकर भी ठीक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी एक जिन उसके साथ था, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसानी स्वभाव के अनुसार उसे परेशान होने की एक्टिंग जरूर करनी थी। इसलिए वो अमन से बोली, अब क्या होगा सर, यहाँ तो चारों ओर बहुत अंधेरा है और मुझे तो अंधेरे में बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर तारा परी ने अमन की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और उसके बारे में और जानने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगी। लेकिन पहली बार की तरह वो इस बार भी कुछ नहीं जान पाई थी, इसलिए उसने किलस कर अमन का हाथ और जोर से दबा दिया, जिससे अमन को दर्द होने लगा, लेकिन वो कह नहीं पाया। वो एक आधा जिन और आधा इंसान था, और किसी जिन का दिल जब किसी लड़की पर आ जाए तो वो उसके लिए मर मिट सकता है, लेकिन उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अमन पहली बार जिस दिन तारा परी से टकराया था, उसी वक्त उसकी आंखें उसकी खुशबू पर मर गई थीं और हर पल उसकी यादों में रहने लगा था। यही वजह थी कि तारा परी के उस पर हाथ उठाने के बावजूद वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। जिस तरह से सारी इंसानी भावनाएं अपने अंदर लेने के बाद तारा परी आधी इंसान और आधी परी बन चुकी थी, ठीक इसी प्रकार अमन भी आधा इंसान और आधा जिन था। अमन के अंदर जहां इंसानी फितरत थी, जलन, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, वहीं जिन के अंदर बेशुमार शक्तियां भी थीं। तारा परी ने अमन से कहा, सर यहां तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, किससे मदद मांगेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तारा परी मन ही मन सोच रही थी। मुझे पता है आप तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी गाड़ी अपने एक हाथ से भी उठा सकते हैं, तारा परी मन ही मन सोच रही थी। तभी अमन ने कहा, तुम एक काम करो, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी का पंचर ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तारा परी समझ गई कि जरूर अमन जिन साहब अपनी शक्ति उपयोग करके टायर ठीक करेंगे, लेकिन तारा परी नहीं चाहती थी कि ये गाड़ी ठीक हो, वो ज्यादा से ज्यादा समय अमन के साथ बिताना चाहती थी। जहां अमन के मन में तारा परी के लिए जज्बात जन्म ले चुके थे, वहीं तारा परी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। उसको तो बस इतना था कि अमन के साथ वो फिजिकल रिलेशन बना ले और एक बेटा पैदा कर ले जो उस परी लोक वाले राक्षस को मार डाले और तारा परी उस राक्षस को उसके किए गए जुल्मों की सजा दे। परीलोक में उस राक्षस ने हर रोज उसके जिस्म के साथ साथ उसकी आत्मा पर भी गहले निशान छोड़े थे, जिसकी वजह से मासूम सी परी, जो हर वक्त हंसती खेलती कूदती रहती थी, जो हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती थी कि उसके आसपास की दुनिया में सब लोग खुशी खुशी रहें, जो बिना स्वार्थ सबकी सेवा भावना में लीन रहती थी, अब वो बदल चुकी थी। उस राक्षस और उस राक्षस के लिए जन्मी नफरत ने उसे अब स्वार्थी बना दिया था। अब किसी को खुशी मिले या ना मिले, बस अब वो राक्षस जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसे अब बस केवल हर हाल में उस राक्षस की दर्दनाक मौत चाहिए थी। तारा परी अमन के कहने पर उस वक्त तो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन जब उसे लगने लगा कि अमन अपनी पावर उपयोग करने वाला है तो वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आई और अमन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अमन जल्द से जल्द गाड़ी ठीक करके तारा परी को छोड़कर आना चाहता था, क्योंकि आज अमावस्या की काली रात थी जो जिन्नों के लिए काफी अपशकुन मानी जाती थी। इस रात में जिन्नों की शक्ति ना के बराबर हो जाती थी और वो इतना कमजोर होता था कि कोई भी कभी उस पर हमला करके उसकी जान ले सकता था। अमन ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो जल्द से जल्द गाड़ी ठीक करके वहां से निकल जाना चाहता था। अब अचानक तारा परी के सामने आ खड़े होने से वो चाहकर भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया और तारा परी से बोला, तुम गाड़ी से बाहर क्यों आ गई हो, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। अमन की बात सुनकर तारा परी गाड़ी में बैठने की बजाय अमन के और करीब जाकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं सर, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ रहिए ना, प्लीज। ऐसा कहकर तारा परी ने अचानक से अमन का हाथ पकड़ लिया। जब भी तारा परी अमन सिंह राठौड़ का हाथ पकड़ती थी, उसके शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ पड़ता था। अभी भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो उसका हाथ नहीं हटा पाया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे कि अचानक जोर से बिजली कड़क कड़ाई और तारा परी डर कर सिमट कर अमन के सीने से जा लगी। और इतने करीब होकर तारा परी पीछे नहीं हटना चाहती थी, उसे तो बस जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करना था। सो उसने इस नाजुक लम्हे को अपना हथियार बनाया और उसने अपने होंठ अमन के होंठों पर रख दिए।